خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گمنام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، تم نے دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، روح اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، روح اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، تیرے جلوہ سے روشن زمین آسمان کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا، یہاں تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا
द्वितीय सत्र में हम उस पिता परमात्मा का सही परिचय प्राप्त करेंगे जिस परम पिता परमात्मा से हमें योग लगाना है, मन बुद्धि उनसे जोड़ना है, अर्थात हमें उनकी स्मृति में रहना है। जिस परमात्मा पिता को हम जन्म जन्मांतर से खोजते रहे हैं, जिसे हम ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा प्रभु परमेश्वर कहकर याद करते रहे हैं, ये भी हम जानते हैं कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहा जाता है, सबका मालिक एक कहा जाता है, और ये विवेक की बात भी है कि परम सुप्रीम ऊंचे से ऊंच एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, अनेक नहीं हो सकते। जब परमात्मा एक है तो उनका सही परिचय भी एक ही होना चाहिए। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मते हैं, समय प्रति समय जो भी धर्मात्मा महात्मा ऋषि मुनि हुए, हरेक ने अपनी साधना अनुसार परमात्मा के बारे में जैसा सोचा समझा अनुभव किया वैसा ही वर्णन उन्होंने हमारे आगे किया। यही कारण है आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मते हैं, जिनको श्री राम में श्रद्धा है वो कहते हैं श्री राम ही भगवान है, जिनको श्री कृष्ण से प्यार है वो कहेंगे श्री कृष्ण ही परमात्मा है। कोई नेचर को गॉड समझते हैं, चारों ओर प्रकृति का जो अपार सौंदर्य फैला है, लोग कुदरत को ही परमात्मा समझते हैं, कोई आत्मा को ही परमात्मा समझ रहे हैं। इसलिए अपने आप को ही भगवान कहलाते हैं, शिवोहम ब्रह्मोहम सोहम रटते रहते हैं। कोई सब में परमात्मा है ऐसी भावना रखते हैं कि तेरे में मेरे में कण कण में सब में परमात्मा है। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मते हैं, स्पष्ट है परमात्मा का सही परिचय हम नहीं जानते हैं। अंडरस्टूड है कोई भी मनुष्य आत्मा परमात्मा का सत्य परिचय नहीं दे सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी अपनी लंबी साधना के अंत में स्पष्ट स्वीकार किया कि ईश्वर अनंत है, हम उनके अंत को नहीं पा सकते हैं। नेति 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 न इति न इति न इति, यह नहीं यह नहीं यह नहीं, हम नहीं जानते हैं, ऐसा स्पष्ट उन्होंने कहा। परमात्मा का सही परिचय स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। सत्य स्वयं प्रकट होता है, कहते हैं ना कि सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, सत्य स्वयं सिद्ध है। परमात्मा खुद सृष्टि पर आते हैं और वे स्वयं हम मनुष्य ऐसी आत्माओं को अपना सत्य परिचय देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को उनके सत्य परिचय की सही परिभाषा बताई है। मैं पहले वो परिभाषा आपके सामने रखूंगी कि वास्तव में परमात्मा किसको कह सकते हैं। हमें स्पष्ट ही नहीं है कि आखिर परमात्मा कौन है, देवात्माएं कौन है, धर्मात्माएं कौन है, महात्माएं कौन है, हमें स्पष्ट ही नहीं है। हम भावना से सबको भगवान मान लेते हैं, पर सत्य क्या है? परमात्मा सिर्फ मानने का विषय नहीं है, परमात्मा सत्य है, यथार्थ रूप से जानना है, पहचानना है। तो मैं पहले वो व्याख्या आपके सामने रखूंगी कि वास्तव में परमात्मा किसको कह सकते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या वो नापदंड है जिससे वेरीफाई कर सके। मैं 5 बातें आपके सामने रखूंगी। पहली बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसे विश्व के सभी धर्म की आत्माएं मान्य करें। परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक देश, कोई एक जाति, समाज के पिता नहीं है। परमात्मा समग्र विश्व के पिता है, सर्व आत्माओं के परम पिता है। इसलिए परमात्मा का सही परिचय उसे कह सकते हैं जिसे सभी माने, कुछ माने उससे दूसरे न माने उसको परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हों। हम जानते हैं जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जो शरीर धारण करते हैं वे शरीर छोड़ते भी हैं। इसलिए हम कहते हैं जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है वो खत्म भी होगा। जो जन्म लेते हैं वे प्रकृति के बंधन में बंधते हैं। वास्तव में शरीर क्या है? प्रकृति है। पांच तत्वों से बना है। जो जन्म लेते हैं सबसे पहले प्रकृति के बंधन में बंधते हैं, स्थल और काल के बंधन में बंधते हैं। जो जन्म लेते हैं वे कर्म बंधन में बंधते हैं, कर्म बंधन में बंधते हैं। चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकती। जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, श्वास लेना, देखना, सुनना, ये शुरू हो जाते हैं, वो कर्म बंधन में बंधते जाते हैं। जो जन्म लेते हैं देह संबंध में बंधते हैं। बच्चा पैदा होते ही परिवार का सभ्य बन जाता है, वो किसी का बेटा है, भाई है, पोता है, रिलेशन में बंधता जाता है। जो जन्म लेते हैं सुख दुख के बंधन में बंधते हैं। आत्मा करता है तो भोक्ता भी आत्मा है। परमात्मा उससे कह सकते हैं, जो जन्म मरण के सुख दुख के देह संबंध के प्रकृति के बंधन से मुक्त हूं, इसलिए परमात्मा को सदा मुक्त, सदा स्वतंत्र कहते हैं। और हम सभी भी भक्ति में परमात्मा से सदा क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं? हमें दुखों से छुड़ाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, हमें ये जन्म मरण के भव के बंधनों से छुड़ाओ। हम सदा परमात्मा से मुक्ति मांगते रहते हैं, अंडरस्टूड है। जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो मुक्ति दे सकेगा। इसलिए परमात्मा उसे कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो। तीसरी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसके ऊपर और कोई नहीं है, जिसके कोई माता पिता, गुरु, शिक्षक, सेठ, स्वामी नहीं है, जो स्वयं ही परम है, उसके ऊपर और कोई आत्मा नहीं है। इसलिए परमात्मा को हम कहते हैं परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिसेप्टर। पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, नाथों का नाथ उससे कहा जाता है। वही हाईएस्ट ऑन हाई, ग्रेटेस्ट ऑन ग्रेट है, उनके ऊपर और कोई नहीं। चौथी बात, परमात्मा उससे कह सकते हैं जो सदा परम है, अपने गुणों में, कर्तव्यों में, स्थिति में सदा परम है। ऐसे नहीं आज परम है, धीरे धीरे मध्यम अधम हो जाएंगे, नहीं, वे सदा परम, सर्वोच्च, अपरिवर्तनशील एक रस है। हम आत्माओं के गुण, कर्म, स्थिति बदलते रहते हैं। हम समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर परिवर्तन को प्राप्त होते हैं। परमात्मा सदा परम है, अपने गुणों में एक रस है, इसलिए हम उनकी महिमा में सदा शब्द कहते हैं कि सदा पावन, सदा मुक्त, सदा शिव। हम मनुष्य आत्माओं के लिए ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए लोग कहते भी हैं कि परमात्मा को पहचानना आसान है, क्योंकि वे अपने गुणों में सदा स्थित है, सदा पावन, सदा प्यार का सागर, सदा कल्याणकारी, सदा रहम दिल। और ही लोग कहते हैं मनुष्य आत्मा को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं सदा रंग बदलते रहते हैं। और पांचवी बात, परमात्मा उसे कह सकते हैं जो सर्वज्ञता है और सदा दाता है। सर्वज्ञाता है माना सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर है, जो संसार के आदि मध्य अंत को, आलोक परलोक को जानते हैं। सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं, इसलिए परमात्मा की महिमा में हम कहते हैं वे ज्ञान के सागर है, नॉलेजफुल है। हम उसे सर्वज्ञ कहते हैं। मनुष्य आत्माओं के लिए हम कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं, हम लिमिटेड बातों का ज्ञान रखते हैं, हम जानते हैं और भूल जाते हैं। आत्मा स्मृति विस्मृति को प्राप्त होती रहती है। परमात्मा के लिए कहते हैं सदा जागती ज्योत, अर्थात ज्ञान के सागर है, और वे सदा दाता है, सदा दाता है, देते ही रहते हैं। इसलिए हम उसकी महिमा में गाते हैं, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, वर दाता, सदा दाता है। हम मनुष्यत्माएं सदा दाता नहीं है, है? हम सदा दाता है नहीं। बेशक हम मनुष्यत्माएं पहले दाता थे, भारत देव भूमि कहा जाता है, देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है, और देवी देवता माना देने वाला दाता, देवी देवता माना देने वाले दाता। इसलिए हर देवी देवता के हाथ कैसे दिखाते, कैसे दिखाते, दाता वरदाता। आज हम देवता नहीं रहे हैं, आज तो हम क्या बन गए हैं, क्या बन गए हैं, लेवता, लेने वाले बन गए हैं। हमें चाहिए चाहिए चाहिए, हम निस्वार्थ भाव से दे नहीं पाते हैं। परमात्मा सदा दाता है, परमात्मा के सत्य परिचय की इस परिभाषा को बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से सोचिए, सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते। भक्ति में तो भावना से अनेकों को भगवान समझते रहे, पर अब विवेक से सोचिए उनके सत्य परिचय की इस परिभाषा की पांचों ही बातें बुद्धि में रखकर अब आप विवेक से बताइए। सबसे पहली बात मैं पूछती हूँ आपसे, क्या आप और मेरे जैसे साधारण मानव शरीरधारी मनुष्यत्माओं को परमात्मा कह सकते हैं, कह सकते हैं? नहीं। कोई भी शरीरधारी मनुष्यत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। सबसे पहली बात बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए, हम मनुष्यत्माएं परमात्मा की याद से योग साधना से महात्मा बन सकते हैं, पुण्यात्मा धर्मात्मा देवात्मा बन सकते हैं, पर परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई पोस्ट पोजीशन या डिग्री नहीं है जो इंसान मेहनत करके पाले। परमात्मा कोई बनता नहीं है। अनादि अविनाशी एक परमात्मा है ही, कोई नए परमात्मा बनते नहीं जाते हैं। एक बच्चा पिता जैसा रूपवान गुणवान ज्ञानवान विद्वान धनवान बलवान बन सकता है, पर पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है और रचना रचना है। हम परमात्मा जैसे बन सकते हैं, परमात्मा ही नहीं बन जाते। इसलिए पहला सत्य बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए, जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। अंडरस्टूड है। दूसरी बात, जो भी साधु सन्यासी हैं, गुरु विद्वान पंडित ऋषि मुनि संत महंत जो भी हैं, हम उनको महात्माएं कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा का सही ज्ञान न होने के कारण कोई थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको ही भगवान समझने लगते। लेकिन सत्य ये है, परमात्मा रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं दिखाते। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने चिंतन में कहा है कि जो छोटे जादूगर होते हैं वे छोटे छोटे जादू करते हैं, परमात्मा महान जादूगर है, वो अल्पकाल की प्राप्तियां नहीं कराते, वो हमारे जीवन की छोटी मोटी बातें ठीक नहीं करते, वे हमारे पूरे जीवन को ही श्रेष्ठ बनाते। इसलिए वे महात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। तीसरी बात, जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, जिन्होंने इस सृष्टि रंगमंच पर आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, फिर चाहे इस्लाम के पितामह अब्राहम है, मोहम्मद पैगंबर साहब है, यहूदियों के हजरत मूसा है, क्रिश्चियनों के जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक जी हैं, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, अशु जरथुष्ट है, शंकराचार्य जी है, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। और इन धर्म स्थापकों ने स्वयं ही स्पष्ट कहा है कि हम उस गॉड के मैसेंजर है, हम उस खुदा के पैगंबर है, हम परमात्मा के पुत्र है। इन धर्म स्थापकों ने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है, ये उनके फॉलोअर्स होते हैं जो अपने अपने धर्म स्थापक में सीमित हो जाते हैं, उस परम शक्ति परमात्मा को भूल जाते हैं। और चौथी बात, बहुत विवेक और निष्पक्ष भाव से समझनी है। हिंदू भाई बहने जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं, कितने जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। देवी देवताएं तो अनेक है, 33 करोड़ कैसे, अनेक है, परमात्मा तो एक ही है। इन देवी देवताओं को सभी धर्म की आत्माएं मान्य नहीं करते। इन देवी देवताओं को सभी धर्म वाले नहीं मानते। आप और धर्म की बात छोड़िए, क्या हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय भी सभी देवी देवताओं को मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते हैं। हम उनको सर्वधर्म की आत्माओं के परमपिता परमात्मा कैसे कह सकते? और अब देखिए, हर देवी देवता के जन्म की, जीवन की, कईयों के मृत्यु की पूरी कथाएं, गाथाएं हम सुनाते। हम इन देवी देवताओं के माता पिता, बंधु, गुरु, सखा, पत्नी, बच्चे संबंधों में बंधे हुए बताते। हर देवी देवता को श्रेष्ठ कर्म करते हुए बताया है कि वे आए ही इसलिए कि असुरों का संहार करें, दुखियों को सुखी बनाएं, नरक को स्वर्ग बनाएं। हम उनको श्रेष्ठ कर्म करते हुए दिखाते, और उन श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप हर देवी देवता को स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए, दैवी राजाई करते हुए दिखाते। इसी की यादगार आज तक आप देखिए, देवी देवताओं को कितने ना अमूल्य सोने चांदी हीरे मोती के वस्त्र अलंकार आभूषणों से हम श्रृंगारते हैं। हर देवी देवता के मस्तक पर रत्न जड़ित ताज बताते हैं, सिंहासन पर बैठे हुए दिखाते हैं। ये ताज, ये तख्त, सिंहासन राजाई की निशानी है। ये तो राजाई की निशानी, हम उनको दैवी राजाई करते हुए भोगते हुए दिखाते। तो जो भोगता है उससे परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा में कौन से विशेषणों का प्रयोग हम करते हैं कि वे अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निराकार निरंजन हम उससे कहते हैं, स्वयं भू कहते हैं, कर्मातीत हम उससे कहते हैं। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो विश्व के सभी धर्मों को मान्य है, जिनके कोई माता पिता नहीं बताए हैं, ऐसा कौन सा स्वरूप है, कौन सा स्वरूप है कोई स्वरूप? तो मुंझने की बात नहीं है। परमात्मा को पहचानना सबसे आसान है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल है, वो भी आत्मा। इसलिए जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, हमारे अविनाशी पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। सिंपल बात, परमात्मा रूप से परम नहीं है, अपने गुणों और कर्तव्यों से परम, ऊंचे से ऊंचे। आज हम किसी को महात्मा कहते हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि हम साधारण मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु हैं और वो महात्मा माना इतनी मोटी आत्मा है, ऐसा तो इसका अर्थ नहीं है ना। जो आत्मा गुण और कर्म से महान है हम उसको महात्मा कहें, जो गुण और कर्म से दिव्य है उसे देवात्मा कहते हैं, जो गुण और कर्म से पतित है उसे पापात्मा कहते हैं, पर है तो हरेक ज्योति बिंदु आत्मा न। इसलिए पिता परमात्मा भी रूप से ज्योति बिंदु है, गुणों के सिंधु है। और एक सिंपल लॉजिक, एक मनुष्य आत्मा का पिता कैसा होता है, कैसा होता है? मनुष्य, एक जानवर का पिता जानवर है, पंछी का पिता पंछी है। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। और आप देखिए इस चित्र में परमात्मा का दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के मुख्यतः सभी धर्मों को मान्य है। हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है जिसे शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग शिवालय हर शहर गांव गली गली जंगलों में भी शिवालय पाए जाते। परमात्मा इतना बड़ा लिंगाकार नहीं है, ये उसका यादगार प्रतीक है, चिन्ह है। ज्योति बिंदु परमात्मा को हम इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, तो भक्ति में पूजा कैसे करें? इसलिए ज्योतिर्लिंग बना दिया गया। रामेश्वर में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए दिखाते हैं। आप वृंदावन गोपेश्वर में जाएंगे, श्री कृष्ण को भी शिव के आगे नमन करते हुए दिखाए हैं। एक और विवेक से समझने की बात बताएं, स्वयं शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे ध्यान करते हुए दिखाया है। देखे हैं ऐसे चित्र, आगे शिवलिंग है और शंकर जी को तपस्वी रूप में बताया। अब सोचने की बात है, शंकर जी स्वयं परमात्मा होते तो वो किसकी याद में बैठे? परमात्मा को तो कोई साधना तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है ना? शंकर जी योगी तपस्वी कहे जाते, जरूर उनके ऊपर कोई परम शक्ति है जिसके ध्यान तपस्या में वो बैठे। वो है परम शक्ति परमात्मा। इसलिए देवों के देव त्रिदेव रचयिता ज्योति बिंदु परमात्मा को कहा जाता है। इसी का यादगार भक्ति में ज्योतिर्लिंग शिवलिंग पर आप देखिए त्रिपुंड कर ऊपर बिंदु किया जाता है। ज्योति बिंदु परमात्मा त्रिदेव रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता ज्योति बिंदु परमात्मा है। इसलिए अमरनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, इवन नेपाल में पशुपतिनाथ, हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं, मानते। मुस्लिम भाई बहने स्पष्ट कहते हैं अल्लाह नूर है। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम हिंदी भाषा में कहते हैं। वही बात अरबी भाषा में कहते हैं, अल्लाह नूर है। नूर मीन्स प्रकाश, ज्योति। और वे स्पष्ट कहते हैं परमात्मा नूरे इलाही है। ये भौतिक प्रकाश बिंदु नहीं, परमात्मा दिव्य अलौकिक ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए भक्ति में हम कहते हैं इन चर्म चक्षुओं से उनको नहीं देख सकते, हम खुद अपने आप को भी नहीं देख सकते ना, हम आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, देखने में तो शरीर आता है ना। जापान के बौद्धिस्ट भाई बहने शिवलिंग आकार का प्रतीक सामने रखते हैं एक स्टैंड पर, और उस प्रतीक से ध्यान केंद्रित करते हैं। विशेष महायान पंथी बौद्धिस्ट शिवलिंग आकार का ही प्रतीक सामने रखते हैं, जिसको अपनी लैंग्वेज में चिनकान शेकी कहते हैं, जिसका अर्थ शांति दाता है। वे उनसे ध्यान केंद्रित करते। गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को आप देखिए, ध्यान अवस्था में बताए हैं, तपस्वी मुद्रा में बताया जाता है, तो वो किसके ध्यान में बैठे, किससे बुद्धत्व मिला, किससे अवेयरनेस आई, वो है परम शक्ति परमात्मा, जिससे आत्मा प्रबुद्ध ज्ञान स्वरूप बनती। यीशु ख्रिस्त ने भी स्पष्ट कहा है, गॉड इज लाइट, आई एम ए सन ऑफ गॉड। उन्होंने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है। इसलिए क्रिश्चियन भाई बहने परमात्मा के ज्योति स्वरूप को मोमबत्ती प्रतीक रूप में जलाते हैं और प्रेयर करते हैं। गुरु नानक जी ने तो एक निराकार परमात्मा की ही महिमा की, एक ओंकार निराकार सतनाम करता पुरुष, अयोनिज अकाल मूरत निर्भय निर्वैर, एक निराकार परमात्मा की ही महिमा गाई है। इवन आप यहूदियों के इतिहास को पढ़िए, हजरत मूसा को भी प्रथम साक्षात्कार ज्योति का हुआ। इवन पारसी भाई बहने परमात्मा के ज्योति स्वरूप को आतश अग्नि के रूप में पूजते हैं। तो विश्व के जितने भी धर्म हैं, उनके मूल धर्म स्थापकों का इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शारीरिक प्राकृतिक आकार नहीं है, इसलिए हमारी तुलना में उनको निराकार कहते। निराकार माना उसका कोई आकार नहीं, ऐसा नहीं, जिसका अस्तित्व है उसका आकार जरूर है। पॉइंट ऑफ लाइफ, उनको हमारे जैसा शरीर नहीं है, इसलिए हमारे जैसा शारीरिक संज्ञावाचक नाम नहीं है। हमारे नाम तो शरीर से है ना। अगर मेरा ये शरीर अभी छूट जाए तो मेरा ये नाम भी तो समाप्त हो जाएगा। मैं नया शरीर लूंगी, मुझे नया नाम मिलेगा ना। हमारे नाम शरीर से है, परमात्मा का नाम गुणों से है, कर्तव्यों से है। वे सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनका मूल नाम शिव है। बेशक उनके अनेक कर्तव्यवाचक, अनेक गुणवाचक नाम हैं, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तेश्वर, पापकटेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, उनके अनेक कर्तव्यवाचक नाम हैं, पर है तो सभी शिवालय कहे जाते हैं। उनका मूल नाम शिव है। शिव मीन्स बेनिफैक्टर, कल्याणकारी। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, थे हैं रहेंगे। शिव कल्याणकारी है, सुंदर मीन सदा पावन है, सदा पावन है। यहां हम परमात्मा के मूल नाम को याद करते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। बाबा माना कोई साधु बाबा की बात नहीं है। बाबा मीन्स पिता। परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात यही है, हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये है कि हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। खुशी है इस बात की, सच में खुशी है, याद रहता है हम परमात्मा के बच्चे। हम तो देह भान में देह के माँ बाप मित्र संबंधों को याद करते रहते, वास्तव में हमें ये गर्व होना चाहिए हम परमात्मा के बच्चे। पर चूंकि हम उस पिता को यथार्थ रूप से जानते नहीं हैं, हमारे उनके प्रैक्टिकल संबंध नहीं हैं, हम उनके ज्ञान गुणों को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हमें खुशी नहीं है। इसलिए हम उनसे मांगते रहते हैं, वरना हम उनके बच्चे हैं, वारिस है, अधिकारी है। कल दादी यही बात आपको बार बार पक्का करा रही थी, हम परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्मा जैसे गुणवान होने चाहिए। पर हमारा रिलेशन रहा नहीं, हम देहभान में फंस गए, देह संबंधों को याद करते रहते हैं। परमात्मा के लिए कहते हैं, देखो कितने आश्चर्य की बात, हम भगवान के बच्चे हैं, और बच्चों को माँ बाप ऑटोमेटिक याद रहते हैं और हम क्या कहते हैं, हमारा मन लगता नहीं है, हमारा मन भटक जाता है। तो ये कितने आश्चर्य की बात है, अपने आप में महसूस करने की बात है कि हम उनके बच्चे हैं तो मन क्यों भटक रहा है। उनकी याद में तो सहज मन लगना चाहिए ना, पर न वो ज्ञान है, न संबंध है, न प्यार है, इसलिए योग नहीं लगता है। जिस पिता परमात्मा की भक्ति में हम कितनी महिमा करते हैं, देखिए परमात्मा की महिमा में हम कहते हैं तेरी महिमा अपरंपार। हम मनुष्य उसका पार पा नहीं सकते हैं, इतनी ऊंची उसकी महिमा है। स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं, हम कह सकते हैं, हम गाते भी हैं, तू प्यार का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, सर्व के सदगति दाता है, सर्व शक्तिमान है, सदा पावन पतित पावन है। भक्ति में हम कितनी उसकी महिमा गाते, हम कह सकते हैं परमात्मा संपूर्ण सत्य ज्ञान सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर है। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा के हम बच्चे हैं, बताइए हम कैसे होने चाहिए, हम कैसे होने चाहिए। हर माँ बाप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते, अपने से भी बढ़कर हम खुद कैसे होने चाहिए। इसलिए अब ये याद करना है, रोज साइलेंस में बैठकर ये पाठ पक्का करना है, रियलाइज करना है कि पिता शांति का सागर, शांति दाता, और हम उनके बच्चे अशांत क्यों है, पिता सुखदाता और हम दुखी क्यों है, कभी सोचते नहीं हो, पिता सदा पावन पतित पावन और हम पतित विकारी क्यों है, क्योंकि हमारा उनसे संबंध नहीं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए फिर मांगते रहते हैं, हमें मांगना नहीं है, हमें परमात्मा का लायक बच्चा बनना है। लायक बच्चे को माँ बाप अपने आप सब कुछ देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं आप सब, खुद माँ बाप नहीं खाते हैं, नहीं पहनते हैं, बच्चे लायक बच्चे के लिए सब कुछ करते। हमें लायक ईश्वरीय संतान बनना है। इसलिए भाइयों और बहनों, योगी बनना माना और कुछ नहीं करना है, योगी बनना माना योग्य बनना है, परमात्मा के बच्चे कहलाने लायक बनना। ऐसे ज्ञान गुण शक्तियों के सागर परमात्मा कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार जादू नहीं करते हैं, परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्यात्मा नहीं करता। परमात्मा हमें पतित से पावन बनाते। जब सारा विश्व देहाभिमान के वश विकारों के पंजे में फंस जाता है, हर मनुष्य आत्मा पतित बन जाती है, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान और योग सिखाते हैं, जिस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें पावन बनना है। वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता माना संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न। जब हम अपनी पवित्रता और दिव्य गुण गंवा देते हैं, हम साधारण मनुष्य आत्मा बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर विकारों अवगुण बुराई दूषण विकारों के व्यसनों के वशीभूत हो जाते हैं, तब हम पतित असुर बन जाते हैं। असुर कोई अलग योनि के भयानक प्राणी नहीं है। देवताएं कोई आकाश में रहने वाले काल्पनिक नहीं है। हम ही जब सर्वगुण संपन्न बनते हैं, हम देवता कहे जाते हैं। जब पवित्रता दिव्य गुण गंवाकर बुराइयां जीवन में ले आते हैं और दुख देने वाले कर्म करते हैं, तो हम ही तो असुर बन जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं, अहम दिखाते हैं, वैर और द्वेष में आते हैं, तब कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? देखा है? उस समय हम कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? कैसे? असुर जैसे ही तो दिखते हैं। परमात्मा हमें असुर से सच्चा मानव पवित्र योगी बनाते हैं और सच्चे मानव से संपूर्ण मानव देवता बनाते हैं। न सिर्फ हम मनुष्य आत्माओं को देवता बनाते हैं, परमात्मा सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। विश्व परिवर्तन विश्व पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। और परमात्मा अपना ये दिव्य कार्य कोई छुमंत्र से नहीं करते हैं। ऐसे नहीं है भगवान आएंगे हम पावन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर तो हर कोई सोचेगा कि भल पाप करते रहो, भगवान आएगा और पावन कर देगा। नहीं, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो वे भी सृष्टि के नियम अनुसार कार्य करते। संसार कर्म क्षेत्र है, इसका नियम है जो करेगा वो पाएगा। परमात्मा करेगा तो परमात्मा पाएगा ना, हम करेंगे तो हम पाएंगे। इसलिए परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा मुख से सत्य ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं। उस ज्ञान और योग से हमें पावन बनना है। सद्गुणों और सत्कर्मों को धारण कर हमें देवता बनना है और हम देवता बनेंगे, घर स्वर्ग बनेगा, तो संसार भी स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए स्वयं परमात्मा पिता विश्व को पावन बना रहे हैं, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं, हमारा कर्तव्य है हम भी पावन बने और विश्व को पावन बनाने में मददगार बने। कौन कौन मददगार बनेंगे? अच्छी तरह ताकत से निश्चय से हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, अब ताली बजाओ खुद के लिए। और ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। हर भारतवासी जानते हैं कौन सा श्लोक बोलते हैं, कौन सा श्लोक बोलते हैं? परमात्मा सृष्टि पर आते हैं उसका यादगार कौन सा श्लोक गाते है? देखो हर कोई जानते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ये सब जानते हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। मुस्लिम भाई बहने धर्म ग्लानी के समय को ही कयामत का समय कहते हैं कि कयामत के समय खुदा खुद आते हैं, खुद आते हैं, इसलिए खुदा कहे जाते हैं। क्रिश्चियन भाई बहने भी कहते हैं फाइनल डिसीजन डे, डूम्स डे कहते हैं। ये हर कोई जानते हैं जब धर्म ग्लानी होती है परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। पर मेरा आपसे प्रश्न है, अति धर्म ग्लानी कब होती है? कब होती? जब जब माना कब? एग्जैक्टली कब? किस युग को धर्म ग्लानी का समय कहे? कलयुग, न कि सतयुग का अंत, न कि त्रेता का अंत, न कि द्वापर का अंत, कलयुग का अंत अति धर्म ग्लानी का। इसलिए परमात्मा कलियुग अंत सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में सृष्टि पर आते हैं। वर्ल्ड साइकिल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है, कलियुग अंत सतयुग आदि के संधिकाल को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जब परम पुरुष परमात्मा सृष्टि पर आते हैं हमें उत्तम पुरुष नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनाते हैं। ये है कल्याणकारी समय। हर युग के अंत परमात्मा नहीं आते हैं, युगे युगे परमात्मा नहीं आते हैं। युगे युगे परमात्मा आते तो कलयुग कैसे हुआ? फिर कलयुग कैसे आया? परमात्मा ने आकर क्या किया फिर? इसलिए हर युग के अंत में परमात्मा नहीं आते हैं, हर कलयुग के अंत परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं और निमित्त प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। ये जौ घी तिल होमने वाला यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है। आप ज्ञान यज्ञ में आए जो कलयुगी नर नारी इस विश्व परिवर्तन की वेला के समय परमात्मा के आदेश को मानकर खुद के विकारों को स्वाहा करेंगे, ज्ञान और योग से खुद की बुराइयों को समाप्त करेंगे, वे आने वाली सतयुगी दुनिया के लायक देवी देवता बनेंगे। तो स्वाहा करेंगे ना खुद की बुराइयां, खुद की बुराइयों को स्वाहा कर। देखो तन मन धन तो भक्ति में भी हम भगवान के नाम पर लगाते थे और अब जबकि स्वयं परमात्मा आए हैं तो हम उनके कार्य में धन साधन वाणी कर्म से मददगार बनेंगे ही, पर सबसे बड़ा आहुति कौन सी देनी है? खुद की बुराइयों को स्वाहा करना। इसलिए चित्र में देखो वही बताया है, जो हमारे अंदर विकार है बुराई है, कल बताया ना इस तीर्थ पर आप आए हैं खुद की कमजोरियों को स्वाहा करना है और ज्ञान योग से शक्तिशाली बनकर दिव्य गुणों को हमें धारण करना है। इसलिए संसार चक्र में चक्र के नियम अनुसार कलयुग के बाद सतयुग का समय, इसलिए संधि वेला में हमें समय को पहचान कर पिता परमात्मा के आदेश को मानकर अपने जीवन को पवित्र श्रेष्ठ बनाना है। और लास्ट बात, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं, मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा इस दुनिया में नहीं रहते हैं। अगर परमात्मा इस दुनिया में ही व्यापक होता तो हम क्यों कहते हैं कि वे अवतरित होते हैं? आप यहां हाजिर है तो मैं थोड़ी कहूंगी कि आप आएंगे, आप आ रहे हैं, आप आते हैं, आप है ही है ना। परमात्मा इस दुनिया में ही व्यापक होता तो हम क्यों कहते हैं कि वे अवतरित होते? जरूर परमात्मा इस दुनिया से दूर कहीं और रहते हैं जहां से वे अवतरित होते हैं। और कल प्रथम लेसन में आपने समझा है कि ये दुनिया हमारा भी घर नहीं है, हमारे लिए भी ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। ये घर नहीं है, कर्म क्षेत्र है। जब हम आत्माएं इस दुनिया की निवासी नहीं है, परमात्मा इस दुनिया का वासी कैसे हो सकता है? इसलिए परमात्मा व्यापक नहीं है। क्यों हम कहते हैं ऊपर वाला? जब परमात्मा को याद करते हैं तो नजर और बुद्धि कहां जाती है? कहां जाती है? ऊपर जाती है। हम कहते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है, कहते हो कि नहीं कहते? हाँ, एक दो को याद कराते हो ना कि ऊपर वाला देख रहा है। कोई गलत काम करके भी, झूठ मूठ करके इस दुनिया की कोर्ट से छूट जाते हैं, तब भी हम क्या कहते हैं कि तुम झूठ मूठ करके इस दुनिया की कोर्ट से छूट गए, पर ऊपर वाले की कोर्ट से नहीं छूटोगे। कहते हैं कि नहीं कहते? परमात्मा परम धाम के निवासी है, जो हम आत्माओं का असली घर है, वो ही हमारे पिता परमात्मा का असली घर है। इसलिए परमात्मा परम धाम के निवासी है। लौकिक में भी बाप और बच्चों का घर एक ही होता है, होता है कि नहीं? हाँ, असली घर एक ही होता है, वो तो बाद में अलग होते हैं ना, असली घर तो एक ही होता है। हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर परम धाम। परम धाम से कलयुग अंत संगम युग में परमात्मा आते हैं और वे स्वयं ब्रह्मा मुख से हमें अपना सत्य परिचय देते हैं। ऐसे कल्याणकारी, सदा पावन, सुखदाता हम आत्माओं के अविनाशी साथी, दयालु, कृपालु, रहम दिल, प्यार के सागर परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए, बताइए? कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए? हाँ, देखो अब नहीं बोलते हैं क्योंकि याद करते नहीं है ना, इसलिए अब कैसे बोलेंगे? पर कितना याद करना चाहिए? सदा, निरंतर। पर हम देहभान में आ जाते हैं, देह के मित्र संबंधों को याद करते रहते हैं, उस पिता को भूल जाते हैं। तो हम सभी बहुत प्यार से उनके यथार्थ परिचय से याद करेंगे। अब तक आप अपनी अपनी मान्यता अनुसार केवल भावना से भगवान को याद करते थे, अब यथार्थ परिचय से जान पहचान कर निश्चय से उस पिता को प्यार से याद करना है। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाए। अपनी डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दीजिए और एक दोस्त से अलग अलग होकर बैठिए, टच करके नहीं बैठिए, नहीं तो वो हिलेंगे, आप भी हिलेंगे, इसलिए अलग अलग होकर बैठिए। परमात्मा को याद करना श्रेष्ठ कर्तव्य है। उन्नत मस्तक से, खुशी से, प्यार से उस पिता को याद करना है। इसलिए कोई भी आंख बंद कर सिर झुकाकर नहीं बैठे। हमने देखा लोग भक्ति में आंख बंद कर सिर झुकाकर बैठते हैं, जैसे परमात्मा को याद करना कोई गुनाह करना है। हमें तो बहुत खुशी से, निश्चय और नशे से उस पिता को याद करना है। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे, मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। इस आत्मा स्मृति में स्थित होकर हम शिव बाबा को याद करेंगे। शरीर से हम यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएंगे। मन की आंख से ज्योति बिंदु परमात्मा को देखेंगे और मन ही मन याद करें, प्यार करेंगे, उससे योग कहते हैं। हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन कैसे याद करना है, प्यार करना है, मैं कमेंट्री द्वारा गाइड करूंगी। आप मन ही मन रिवाइज करेंगे, महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, उस अनुभव में स्थित होंगे। आत्म स्थिति में स्थित हो जाइए। मेरा असली घर परम धाम है, जहां पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। मैं मन की आंख से ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देख रहे हैं। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से मैं आपको खोजती रही हूं, दर दर भटकती रही हूं, लेकिन मुझे कहीं भी आपका सही परिचय नहीं मिला। मेरे कल्याणकारी शिव पिता, आप कितने रहम दिल, दयालु, कृपालु हैं, जो आप स्वयं सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ आपका सत्य ज्ञान आज मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ और आप पिता परमात्मा कौन है। आपके सत्य ज्ञान को पाकर मेरा जीवन धन्य बन गया है। मुझे अपार हर्ष है। जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया। प्यारे शिव पिता, अब मेरा लक्ष्य है आपके सत्य ज्ञान को, आपके सर्व गुणों को, आपकी सर्व रूहानी शक्तियों को मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है। प्यारे शिव बाबा, आप शांति के सागर विश्व शांति दाता है। आपके संतान में आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। अब मैं स्वयं भी शांत रहूंगी। शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। मैं सबके साथ प्यार से चलूंगी। आप सुखदाता की संतान, मैं आत्मा भी सुखदेव बनूंगी। मेरे सर्वशक्तिमान सदा पावन मीठे शिव बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा भी पावन बनती जा रही हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ। मैं आपके साथ का अनुभव करती हूँ। मैं शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और नशा है, खुशी है। कि मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान मैं शांत हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं स्वयं दिव्य ज्योति बिंदु अविनाशी चैतन्य शक्ति शांति।